आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वाति तिवारी की कहानी मुट्ठी में बंद चॉकलेट। तो आइए सुनते हैं एक प्रेम कहानी मुट्ठी में बंद चॉकलेट। अभी ठीक से नींद खुली भी नहीं थी कि किसी ने फ़ोन घनघना दिया। एक बार तो मन में आया बजने दूं, अपने आप बंद हो जाएगा, पर सुबह सुबह कौन नींद खराब करे। सर्द रात में सुबह ही तो अच्छी नींद लगती है, जब बिस्तर गर्मा जाता है रात भर में। एक बार बाहर निकले कि गई गर्माहट। लो तुम्हारा फोन, माथे पर होंठों का स्पर्श करते हुए मलय ने जगाया था। इतनी सुबह कौन है? तुम ही देख लो। हेलो हेलो हेलो, जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, मैं हाँपने लगी बगैर दौड़े ही। मैं आ रहा हूँ दिल्ली आज का दिन तुम्हारे साथ बिताने। उधर से आई आवाज़ में पिछले 45 सालों का अपनापन चाशनी की तरह भरा हुआ था। व्हाट, तुम दिल्ली? क्यों, ऑफिशियल? आज तुम्हारा 50वां जन्मदिन है, याद है? एक बार बचपन में तुम्हारा जन्मदिन भूल गया था। हाँ तो तब तुम गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा, तौबा। तब तुमने वादा लिया था कि तुम्हारा जन्मदिन कम से कम 50 साल तक नहीं भूलूं। तो कैसे भूलता 50वां जन्मदिन? ओ तुम भी ना, मैंने फ़ोन रख दिया। अच्छा हुआ मलय अखबार और मेरे लिए चाय का प्याला लेने चले गए थे, वरना झूठ बोलना मुश्किल होता। उठकर बैठी तो पलंग के पास ड्रेसिंग टेबल पर एक गिफ्ट पैक और गुलाब के फूल रखे थे और जनाब चाय लिए खड़े थे। हैप्पी बर्थडे, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो अभी अभी, बोलते बोलते चुप हो गई थी मैं। किसका फ़ोन था? अरे मेरे ऑफिस में वो नया कंप्यूटर इंजीनियर आया है ना, संजीव, उसी का। ओह तो जनाब हमसे पहले बाजी मारना चाहते हैं बर्थडे विश करके, क्यों? आप भी ना मलय, बाज नहीं आएंगे अपनी मस्करी से, कोई आपसे पहले क्यों करके बर्थडे विश करेगा। पर बर्थडे बेबी, हमने तो रात में 12 बजे ही बर्थडे विश कर दिया था, हमसे नहीं जीत सकता कोई, मलय मजाक ही मजाक में अपनी बात कह गए थे। क्या मलय, आप भी, वो मुझसे 10 साल तो छोटा होगा उम्र में और मेरे बेटे से थोड़ा सा बड़ा दिखता है बस। पर थैंक्स संजीव, तुम्हारा नाम याद आ गया वक्त पर, वरना मलय को बताती कि फ़ोन शेखर का था तो उनका मोड़ा सारा दिन ऑफ रहता। वो आ रहा है ये बता देती तो शायद पूरे हफ्ते या शायद पूरे महीने ही। मलय से झूठ बोलना इतना आसान नहीं, और झूठ बोलना चाहता भी कौन है? पर कभी कभी अनचाही परिस्थितियाँ आदमी को झूठ बोलने पर मजबूर कर देती हैं। घर की शांति बनी रहे और जिसके साथ जीवन भर का रिश्ता है उसे दुख भी तो नहीं पहुँचाना है, यही सोचकर झूठ बोलना पड़ा। मलय और शेखर मेरे जीवन के दो किनारे बनकर रह गए और मैं दोनों के बीच नदी की तरह बहती रही, जो किसी भी किनारे को छोड़े तो उसे स्वयं ही सिमटना होगा अपने अस्तित्व को मिटाकर। क्या नदी कभी किसी एक किनारे में सिमट कर नदी रही है? बचपन का एक साथी सपनों का हम सफ़र ही बन पाया था कि दूसरा जीवन भर के लिए हम सफ़र बन गया। एक ने 7 फेरे में 7 जन्मों के वचन ले लिए तो दूसरा छूटते हाथ से केवल एक वादा ही कर पाया था, जब भी मिलेंगे अच्छे दोस्त बनकर मिलेंगे, जीवन के हर सुख दुख में अदृश्य साथ खड़े रहेंगे। वादे के साथ तमाम लक्ष्मण रेखाएं दोनों ने अपने बीच खींच ली थी और उम्र के 50 सालों में कभी नहीं लांघा, और लांघने से मिलना भी क्या था। एक दूसरे की नज़रों में हमेशा सम्मान देखने की इच्छा से ज़्यादा शायद कुछ नहीं चाहा था हमने। मर्यादा की लक्ष्मण रेखाएं अदृश्य होती हैं, दूसरे कहाँ देख पाते हैं। रिश्तों की मर्यादा को देखने से ज़्यादा उन्हें समझने की ज़रूरत होती है, पर उसके लिए एक अंतर्दृष्टि चाहिए। उसमें कितनी सच्चाई और खुलेपन से मलय को बताया था कि शेखर उसका बचपन का दोस्त है, पर मलय ने शेखर को वह सम्मान नहीं दिया जिससे वह पारिवारिक रिश्तों में जगह पा सके। और तब से शेखर से बात होती भी तो वह बताने से टाल जाती। अब एक औपचारिकता भर रह गया था दिल से जुड़ा यह गहरा रिश्ता। और फिर उसने पिछले सालों में लखनऊ भी छोड़ दिया था। मलय का प्रमोशन दिल्ली होते ही उनका लखनऊ छूट गया। शेखर से बस कभी कभार ही फ़ोन पर बात होती। 8 साल पहले लखनऊ छोड़ते वक्त मुलाकात हुई थी कॉफ़ी हाउस में। शेखर ने विदाई भोज का निमंत्रण भी दिया था, पर अगली बार कहकर वह टाल गई थी। जानती थी मलय नहीं जाएंगे और मैं अकेले कहीं भी लंच या डिनर पर नहीं जाती। इन 8 सालों में कितना कुछ था जो बैठकर बांटना था शेखर के साथ। बाबूजी के जाने के बाद एक वही तो है जिससे कई मसलों पर राय मशवरा करने में राहत मिलती है मन को। मलय की और बच्चों की शिकायतें, मलय की अच्छाइयाँ, भाई बहनों से बढ़ती दूरी, चचेरे ममेरे रिश्ते, वो बचपन से सभी विषयों पर शेखर से बात करती रही। मलय मेरे जीवन, मेरे घर, हर क्षेत्र से जुड़े हैं। कोई भी बात मलय को बताने से वे प्रभावित होते हैं और मैं नहीं चाहती कि मलय मेरे पारिवारिक मामलों में परेशान होते रहें। शेखर को बताने से वह एक अभिन्न मित्र होने के साथ साथ एक दृष्टा की तरह उन सब बातों को देखता और मुझे राय देता है। एक अंतर्दृष्टि की तरह जरूरी होता है जीवन में एक ऐसा दृष्टा। नाश्ता और खाना बनाते बनाते मैं अनमनी सी ही रही। एक उथल पुथल थी मन में। हजारों किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके कोई मुझसे 50वें जन्मदिन पर बधाई देने आ रहा है। इस ख्याल ने उम्र को 16वें साल सा खुशनुमा बना दिया। पर मन ही मन कुढ़ती रही, क्योंकि 50 साल की उम्र में भी मैं एक पढ़ी लिखी कामकाजी आधुनिक स्त्री सामाजिकता के दायरे में हूँ, वही परंपरागत डरपोक भारतीय नारी जो पति की नापसंद और पसंद के आगे कोई सोच नहीं रखती। भीरू स्त्री जो घर को शक के दायरों से बचाने और अपने सतीत्व को सिद्ध करने से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती। 25 साल की बेटी, 20 साल का जवान बेटा, 2 बच्चों की माँ जो परिवार के हर सदस्य के जन्मदिन पर उनके दोस्तों को दावत देती रही, पर अपनी उम्र के 50वें वर्ष तक अपनी पसंद के एक व्यक्ति को चाय पर भी घर आमंत्रित नहीं कर सकी। मलय से बात करूं ना करूं, करूं ना करूं, इसी उहापोह में अनिर्णय के साथ ही दफ्तर जाकर बैठ गई। 4 बजे तक शेखर को नहीं बता पाई कि मैं कहाँ मिलूंगी। 6 बजे मेरा राजधानी एक्सप्रेस से टिकट है वापसी का, क्या तुम मिलना नहीं चाहती अनु? शेखर ने पूछा था। नहीं शेखर, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सिर दर्द है आज, तुम्हें तो पता है इन दिनों मुझे माइग्रेन रहता है। हाँ ऐसा करो, चाणक्यपुरी से आगे मेरा दफ्तर है ग्रीन पार्क में, मैं 20 मिनट के बाद वहीं नीचे वाले कैंटीन में बाहर मिलती हूँ तुम्हें। तुम्हें भी तो 20-25 मिनट लग ही जाएंगे आने में। ओके, मैं जैसे ही नीचे उतरी सामने से आते शेखर को देखकर लगा जैसे बाहें फैलाए चला आ रहा है। मन हुआ कि मैं दौड़कर उसके पास जाऊं। पास पहुंची तो उसने रजनीगंधा की एक कली देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे अनु। और मैंने अपनी हथेली में दबाई अपने नातिन की चॉकलेट सामने कर दी। लो मुंह मीठा करो शेखर। वाह, तो तुम अब भी चॉकलेट खाती हो? हाँ नानी हूँ ना एक गुड़िया की, उसके साथ खानी पड़ती हैं। कैसी हो तुम अनु? मैं ठीक हूँ, थोड़ी दुबली हो गई हो, तुम भी तो दुबले लग रहे हो। चलो छोड़ो, जानती हो आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, पर तुमने तो लिफ्ट ही नहीं दी। कुछ कहूँ? नहीं कुछ मत कहो, तुमसे मिलने का वादा था और मैंने पूरा किया। मेरी टैक्सी खड़ी है सामने, हो सके तो वहाँ तक साथ चलो। चलती हूँ, वहीं से मुझे मेट्रो पकड़नी है। तुम आज ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती थी? सब कुछ जानते समझते हो, तब यह प्रश्न क्यों शेखर? शेखर ने अपनी मुस्कुराहट से खुद ही मेरे उत्तर की जगह भी भर दी थी। फुटपाथ पर चलते हुए तुम्हें डर तो नहीं लगेगा नू? शेखर ने बचपन की तरह छेड़ा था। तुम साथ हो ना, किस किससे डर लगे हो? क्यों डर लगेगा? जब तुम साथ होते हो तो किसी से डर नहीं लगता। कह तो दिया पर मन ही मन डर रही थी, कहीं मलय मेट्रो स्टेशन के सामने गाड़ी लेकर आ गए तो। शेखर ने पूछा, चलें? हाँ, मेरे दफ्तर से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा ही चलना था। मैं शेखर से बात करते हुए चलती रही। बातें बेमानी थी, मात्र औपचारिक सूचनाओं जैसी, लेकिन साथ चलने का एहसास एकदम अलग था। लगा उन चंद पलों में शेखर के साथ पूरा दिन गुजार देने का एहसास है। साथ चलते हुए कदम कितनी लंबी दूरी तय कर रहे थे, कितनी लंबी दूरी, शायद बचपन से अब तक। शायद हमारे मन कदम दर कदम साथ चलते रहे। मैं तुम्हारे लिए रजनीगंधा की 101 कलियां लाना चाहता था, पर केवल एक ही ला पाया। शेखर के इन शब्दों में असीम वेदना थी, एक अलग कसक, शायद कसक और वेदना दोनों का एक अजीब सा मिला जुला भाव था जो अंदर ही अंदर मन को उदास कर रहा था। नहीं शेखर, 101 कलियां हो या केवल एक, हैं तो दोनों ही भावनाओं की प्रतीक ना। फिर एक कली तो ज़्यादा आसानी से मेरे पर्स में, मेरे बालों में, कहीं भी रख कर घर तक ले जाई जा सकती हैं। अच्छा हुआ एक ही लाए, ज़्यादा लाती तो कहाँ रखती। और फिर तुम्हारी शुभकामनाएं यहाँ वहाँ तो नहीं पटक सकती थी ना, और इस एक कली में तुम्हारी सारी शुभकामनाएं आ गई हैं। मेरे लिए यह रजनीगंधा की तुड़ी मुड़ी कली नहीं, फूलों की बहार है शेखर, यह कहना चाहती थी पर कुछ नहीं कहा। शेखर, तुम्हें लंच या डिनर तो दूर एक कप कॉफ़ी भी ऑफर नहीं कर पाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चॉकलेट है ना। शेखर ने उस चॉकलेट को अपनी जेब में रखा। जानती हो, यह चॉकलेट नहीं, यह हमारे रिश्ते की मिठास है, इससे मीठा कुछ भी नहीं। हाथ हिलाते हुए शेखर ने विदा ली। मेट्रो से घर पहुंचने तक रजनीगंधा की वह कली मेरी हथेली पर महकती रही, जिसकी महक अगले 50 साल और जीने की इच्छा जगा गई। धन्यवाद।